श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 2। ना मे विदुहुस गणाः प्रभवम् न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस संबंध में काफी अच्छी टीका लिखी है, उसके बाद फिर हम प्रभुपाद की टीका को देखेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान का जो अवतरण है वो भगवान की अहेतु की कृपा से ही समझ में आ सकता है, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि इस श्लोक में वो बता रहे हैं न मे विदु सुरगणा, कि देवता भी भगवान के प्रभवम, प्र मतलब अत्यद्भुत पारलौकिक, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था माता देवकी से, उससे भी उसके बारे में देवता लोग भी नहीं जानते हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि देवता लोग नहीं जानते हैं क्योंकि वो लोग भौतिकता में एब्जॉर्ब है, मतलब भौतिक भोगों में उनका अभिनिवेश है, तो हो सकता है कि ऋषिगण जानते हों, तपस्या में लगे रहते हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं, वो भी नहीं जानते, न महर्षय, ना तो सुरगणा यानी कि देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि लोग जानते हैं। तो भगवान इसका कारण बता रहे हैं कि क्यों नहीं जानता कोई व्यक्ति, क्योंकि भगवान ही उन सभी के कारण है, और इस कारण से भगवान के जन्म के बारे में वो नहीं जानते। जिस प्रकार से एक बच्चा, एक लड़का अपने पिता के जन्म के बारे में नहीं जानता है, उसी प्रकार से देवता और ऋषिगण क्योंकि भगवान के बाद में हुए हैं, भगवान इनके आदि हैं, इस कारण से भगवान के जन्म के बारे में वो नहीं जानते हैं। एक और इसके बारे में वो चर्चा करते हैं, बहुत सुंदर। यहाँ पे आचार्य बोलते हैं कि प्रभवम शब्द का एक अर्थ ये भी होता है, उसका अर्थ होता है कि विभूति या शक्ति, तो वो अर्थ यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि आगे जाके अर्जुन 14वें श्लोक में बोलते हैं कि देवता और असुर भी आपके जन्म के बारे में नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे प्रभवम शब्द का अर्थ यही है कि भगवान की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तात्पर्य देखेंगे प्रभुपाद जी का, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। तत्व की दृष्टि से समझने के लिए, तत्व का अर्थ होता है कि सत्य क्या है, तो इस दृष्टि से समझने के लिए ब्रह्म संहिता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सभी तत्वों को बिल्कुल ठीक ठीक स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते, जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस शूद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। बहुत सुंदर बात है। देखिए, देवता और ऋषि इत्यादि अपनी शक्ति से भगवान के बारे में नहीं जान सकते हैं, हम इस गीता के श्लोक में समझ रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस जगत में पैदा हुआ है कुछ समय के लिए, उसकी बुद्धि बहुत कम है, तो वो तो निश्चित रूप से भगवान के बारे में अटकलबाजी ही करेगा, भगवान के बारे में ठीक ठीक नहीं जान पाएगा जब तक उस ज्ञान को परंपरा में उसने स्वीकार ना किया हो। तो ऐसे विद्वान के द्वारा भगवान के ऊपर कोई भी की गई अटकलबाजी किसी को लाभ नहीं पहुंचाएगी। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप से में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं, और इस कारण से बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान तो इस जगत में आ ही नहीं सकते, लेकिन उसका कारण नहीं बताते हैं कि वो क्यों नहीं आ सकते। एक तरफ तो वो कहते हैं कि कोई भी काम भगवान कर सकते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि भगवान आ नहीं सकते, तो ये सब तो विरोधाभास है। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। बहुत सुंदर बात है। क्यों? क्योंकि अगर विद्वत्ता से सब लोग भगवान को जान लिए होते तो ऋषिगण जान लिए होते और देवतागण जान लिए होते और आजकल के साइंटिस्ट भी जान लिए होते। तो विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया किंतु जान नहीं पाए। वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानाम, ये भी ब्रह्म संहिता में आता है कि वायु की गति से अपने मन को भगाएं, फिर भी मुनिगण भगवान के महिमा को समझ नहीं पाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते हैं। जहां तक इसको प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में बोला गया है कि जो देवता लोग हैं वो भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता। इसको थोड़ा समझिए, इसका अर्थ क्या है। देखिए, लोग जब सोचते हैं कि इस सृष्टि के पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा, तो अपने छोटी सी मानसिक चिंतन के द्वारा वो ये नहीं समझ पाते हैं या सोच पाते हैं कि एक व्यक्ति इतने सारे सब ब्रह्मांडों को, पहली बात तो अपने मानसिक चिंतन से हम ये भी सोच नहीं सकते हैं कि अन्य ब्रह्मांड हैं भी, हम एक ही ब्रह्मांड की कल्पना करेंगे जो हमें दिखाई पड़ता है। तो व्यक्ति सोचेगा कि एक ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह हैं, इतनी सारी चीजें हैं, ये एक व्यक्ति से कैसे आ सकती है। तो इस कारण से निष्कर्ष यही निकलता है उन लोगों के द्वारा जो मानसिक चिंतन करते हैं कि ये सब कुछ एक इम्पर्सनल ब्रह्म से आया है, अव्यक्त से आया है। और इस ये बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि वस्तुतः कुछ भी अगर संरचना होती है तो उसके पीछे संरचनाकार होता है। अब ऐसे संरचनाकार जो कि अव्यय हो, यानी कि इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी खत्म ना होता हो और सभी चीजों का स्रोत हो, इसकी जानकारी उनको मानसिक चिंतन के द्वारा नहीं है, इसी कारण से ये लोग समझ नहीं पाते। किंतु इस तरह के मूर्तापूर्ण चिंतन से कृष्ण को कोई नहीं समझा जा सकता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि कृष्ण को समझा नहीं जा सकता है, इसका अर्थ ये है कि इस मूर्तापूर्ण तरीके से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता है। कृष्ण को समझने की विधि है भगवान के भक्तों के मुख से प्रामाणिक रूप से सुनना। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में ये कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे, और समझने का अर्थ है भगवान कृष्ण की बात पे सहजता से श्रद्धा रखे, विश्वास रखे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं है कि शास्त्र पढ़ करके या किसी भी आध्यात्मिक अनुशीलन से हम भगवान को पूरा पूरा समझ पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जितनी मात्रा में भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं और अपने आप को हमारे हृदय में प्रकट करना चाहते हैं, उतनी मात्रा में हम भगवान को समझ सकते हैं। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं, मतलब पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं है। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवद्गीता और तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें। इससे भगवान की कृपा हम पर होती है। जो भगवान की अपराशक्ति में है, यानी भौतिक शक्ति में है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। समझिए इस लाइन को, बहुत अच्छी बात है। प्रायः लोग इस समाज में लोग कहते हैं कि हाँ भाई, इतना सब कुछ हो रहा है तो कोई शक्ति तो कर रही है, कोई शक्ति तो कर रही है। सत्य बात है, ये तो हम समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन ये भी समझ में आना चाहिए कि शक्ति एक शक्तिमान के द्वारा नियंत्रित होती है, शक्ति अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती है। तो अब उस कंट्रोलर को या इस ईश्वर को जानने के लिए एकमात्र तरीका है कि हम भगवद गीता से सुने, जैसे अपने पिता को जानने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी माँ से पूछें। अटकलबाजी करेंगे तो इस जन्म के पिता के बारे में ही जान नहीं पाएंगे, तो अन्य परम पिता परमेश्वर के बारे में जानने का तो कोई मतलब नहीं होता है। चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, क्योंकि वो परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। जब भगवान आते रहते हैं बार बार, कितने अवतार होते रहते हैं, तब भी ये हल्ला होता रहता है कि भगवान निराकार हैं। तो सोचिए, अगर भगवान कभी नहीं आते, ये कभी ना आए, तो फिर कितनी धारणा लोगों की पक्की हो जाएगी कि भगवान निराकार है। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति से कलमश ग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये लोग ऐसा सोचते हैं, मायावादी लोग, कि जब भगवान कृष्ण आते हैं तो वस्तुतः ब्रह्म है जो कि माया के द्वारा आवृत हो जाता है, और वो आकर के लीला करता है। उसके बाद फिर जब माया का आवरण हट जाता है, फिर ये ब्रह्म में जाके लीन हो जाता है। इस प्रकार की धारणा बहुत बड़ा अपराध है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, क्योंकि उनकी जो लीलाएं हैं वो दिव्य हैं, शाश्वत हैं, और भौतिक प्रकृति के द्वारा कभी भी कलुषित नहीं होती हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णता ग्रहण कर चुके हैं भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवत कृपा का अर्थ क्या है? भगवत कृपा का अर्थ है भगवान के प्रति सहज आकर्षण। जिस व्यक्ति पर कृष्ण की कृपा होती है वो सहज रूप से कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है और कृष्ण की कृपा से भगवान को समझ पाता है, भगवान कृष्ण को समझ पाता है। और उसका कारण भी है क्योंकि भगवान के भक्त भगवान से द्वेष नहीं करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान उनके हृदय के ज्ञान को, अंधकार को अपने आप नष्ट कर देते हैं। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते क्योंकि ब्रह्म में कोई सेवा करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है और वो कृष्ण की सेवा का सुख अनुभव करना चाहते हैं। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। तो देखिए, हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि भगवान के चरणों में श्रद्धा है, उनकी सेवा करने की प्रवृत्ति है, इस कारण से कृष्ण की कृपा उनको मिलती है और भगवान को बड़ी आसानी से समझ पाते हैं, अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। इस बात को भगवान ने गीता में कई बार बोला है कि जो अनन्य भाव से उनकी भक्ति करता है वही उनको समझ पाता है, केवल बौद्धिक चिंतन से नहीं समझ सकता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो ये बात इम्पॉर्टेंट बात है, भगवद्गीता के इन अध्यायों के द्वारा व्यक्ति को समझ में आ जाना चाहिए कि भगवान हैं कौन और उनकी ही शरण में हम लोग को जाना चाहिए। हरे कृष्णा।